नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 5 माओवादी मारे गए। देश भर में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के समय हल्का कोहरा जारी रहेगा। और हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम भारत का सामना चीन से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है।
हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास का ऐसा मॉडल अपना रही है जहां निवेश से प्रगति और रोजगार को गति मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश का केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था और आज ये 48 लाख करोड़ रुपए है।
2013-14 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये 11 लाख करोड़ रुपए आज नए अस्पताल, नए स्कूल, सड़क, रेल, रिसर्च फैसिलिटी, ऐसे अनेक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पब्लिक पर खर्च बढ़ाने के साथ ही हम पब्लिक का पैसा भी बचा रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि देश में अब 2.25 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं और युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत में कम से कम 10 करोड़ लखपति दीदियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में भारत के निकट सहयोगी नाइजीरिया की ये उनकी पहली यात्रा होगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा सामरिक भागीदारी की शुरुआत का अवसर प्रदान करेगी जो लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित होगी। श्री मोदी 19वीं G20 शिखर बैठक में ट्रॉयका सदस्य के रूप में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत की सफल अध्यक्षता में G20 लोगों का G20 समूह बन गया है और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को इसकी कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अर्थपूर्ण चर्चा होगी। श्री मोदी ने कहा कि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर उनकी यात्रा 50 वर्ष से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा होगी। बैठक के दौरान दोनों नेता साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित अपने अनूठे संबंधों को सामरिक दिशा प्रदान करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि वो वोट बैंक के लिए आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। श्री शाह ने दुमका में एक जनसभा में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए धन आवंटित नहीं किया।
हेमंत बाबू, UPA की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था, इसका अंतिम बजट उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया, और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम किया।
वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने जामताड़ा में एक जनसभा में कहा कि हेमंत सोरेन झूठे वादे कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ये सही समय है।
क्या बोले थे हेमंत सोरेन कि 5,00,000 युवाओं को नौकरी देगा? क्या आपका घर में किसी को नौकरी मिला? बहू और बेटा का शादी होने में सोने का सिक्का मिलेगा? किसी को मिला सोने का सिक्का?
दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार को धमकाने का आरोप लगाया। श्री सोरेन ने दुमका में एक जनसभा में कहा कि केंद्र ने राज्य में चुनावों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सक्रिय कर दिया है।
हमारे सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही सरकार गिराने में लगे ये लोग धन बल के दम पर चुनाव को अंजाम देना चाहते हैं। आज जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक पाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी संवैधानिक संस्था है, सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है।
दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिनेश मरांडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी की हमारी श्रृंखला में आज एक नजर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दिग्रस विधानसभा सीट पर, जहां से मौजूदा मंत्री संजय राठौर चुनाव लड़ रहे हैं।
शिवसेना के संजय राठौर पश्चिमी विदर्भ के यवतमाल जिले से दिग्रस निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में राठौर खाद्य एवं औषधि विभाग संभाल रहे हैं। इस साल कांग्रेस ने उनके खिलाफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को मैदान में उतारा है। करीब 20 साल बाद ये दोनों प्रतिद्वंदी माणिकराव ठाकरे और संजय राठौर इस चुनावी जंग में आमने सामने होंगे। दिग्रस निर्वाचन क्षेत्र में 3,00,000 से ज्यादा मतदाता है और इस निर्वाचन क्षेत्र में कपास और सोयाबीन फसल के भाव, सूखा राहत और उद्योग की कमी के कारण क्षेत्र में बेरोजगारी जैसे मुद्दे मौजूद है। धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार के प्रयासों की सराहना की है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हैं।
महायुति की सरकार मराठी गौरव को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है और मुझे तो महाराष्ट्र समेत देश भर के मराठी लोगों के संदेश, हमें हमारे इन सकारात्मक प्रयासों को जनता के बीच लगातार दोहराते रहना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। माओवादियों की सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल, विशेष कार्य बल और जिला रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम नारायणपुर जिले में तलाशी अभियान पर थी। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गए। तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देहरादून नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर धामपुर इलाके में हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने एक तिपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तिपहिया वाहन में बैठे चालक समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन देखभाल इकाई NICU में कल रात भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 16 अन्य शिशु घायल हो गए। घटना में जान गंवाने वाले 10 नवजात शिशुओं में से 3 के शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 10 नवजात शिशुओं में से 3 की पहचान के लिए DNA परीक्षण कराया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 5,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि घायल 16 बच्चों का इलाज किया जा रहा है और सभी बच्चे पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। घटना के पीछे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। NICU में जिस वक्त आग लगी वहां 50 से अधिक नवजात शिशुओं का इलाज किया जा रहा था। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और एक स्मारिका जारी की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। आज दोपहर 1 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के शादीपुर स्टेशन में AQI 462, बवाना में 438, आनंद विहार में 436, अलीपुर में 438, अशोक विहार में 439 और रोहिणी में 426 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज केरल और माहे में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत का सामना चीन से होगा। मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक अपराजेय हैं। पिछले मुकाबले में बृहस्पतिवार को भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया था, जबकि चीन ने जापान को 2-1 से पराजित किया था। भारत के अभय सिंह एस मलेशिया स्क्वाश कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज मेजबान खिलाड़ी इयान यो नक का सामना करेंगे। कल शाम क्वार्टर फाइनल में अभय ने भारत के ही विलवन सेंथिल कुमार को 3-1 से हराया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को अब विश्व स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। आज नई दिल्ली में 4th लेखा परीक्षा दिवस पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न देश भारतीय लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।
दुनिया के देश हमारी इस लेखा परीक्षा का अध्ययन करने आते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भारत की लेखा परीक्षा को अपने आप अपनाएं, और इसीलिए हमारी संस्था प्राइड के अंदर भी कम से कम 50 देश के अधिकारी कर्मचारी भारत में आते हैं।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्था की स्थापना और सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में इसके योगदान को याद करने के लिए हर साल 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कहा कि ये मेला कारीगरों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर मंडप में जनजातीय थीम पर विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद रखे गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 5 माओवादी मारे गए। देश भर में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़कर गंभीर श्रेणी में पहुंची। अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के समय हल्का कोहरा जारी रहेगा। और हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम भारत का सामना चीन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।